ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तत्राप्य जात निर्वेदो स्वयं जड़यो पातु वैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे तत्राप्य जात निर्वेदो गृह स्वयं भृत जरयो पातु वैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे तो इसके पूर्व श्लोक में आया था कि जैसे बैल बूढ़ा हो जाने पर उसका किसान लोग फिर आदर नहीं करते हैं, इसी प्रकार वृद्ध हो जाने पर घर के बच्चे और अपनी पत्नी ये सब आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, फिर भी वह व्यक्ति घर में ही पड़ा रहता है। इसी को अगले श्लोक में बता रहे, तत्रापि इस स्थिति में भी वही घर में ही वह पड़ा रहता है, यद्यपि घर में बड़ा अनादर होता है और किसके द्वारा, अपने पुत्रों के द्वारा और अपनी पत्नी के द्वारा, फिर भी परिवार के लोगों का अनादर सहते हुए भी वह घर में ही रहना पसंद करता है। और इस स्थिति में रहते हुए उसमें थोड़ा भी वैराग्य नहीं होता है, अजात निर्वेदा घर गृहस्थी से उबता नहीं है और उसका पालन वे लोग करते हैं जिनका पालन उसने स्वयं किया है, अब बच्चों की कृपा पर वो निर्भर करता है और बच्चों का उसने पालन किया था। वे लड़के जब सयाने हो जाते हैं, उनकी अपनी पत्नी आ जाती है, तो बहुत बड़ी दया होती है कि वे पिता को और माँ को भोजन दे दें, यही बहुत बड़ी दया होगी। और भी भोजन कैसे, भोजन फेंक देते हैं उसके सामने और वह कुत्ता जैसा खाने लगता है। गृहपाल विवाह, गृहपाल दो तरह के होते हैं, एक चौकीदार जो घर का पालन करता है और दूसरा चौकीदार है कुत्ता, वो भी घर का पालन करता है और कुछ नहीं तो भों भों भोंकता रहता है, उसको गृहपाल कहते हैं। जो गृहपाल जैसे घर पर पड़ा रहता है और उसको घर का मालिक कभी भोजन दे देता है तो पाल लेता है, तो ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति घर पर पड़ा रहता है और सब लोग खा लेते हैं, बच्चा पत्नी आदि सब खा लेते हैं, नौकर चाकर सब खा लेते हैं, सब याद आती है कि उस बुढ़वा को भी दे दो, तो बड़े कष्ट से दे देते हैं उसको, ये सोचते हैं कि अब तो इसका भोजन करना बेकार है, लेकिन फिर भी दे दो। अब दे देते हैं दया से नहीं, लोक लज्जा से कि लोग क्या कहेंगे कि ये लोग बूढ़े व्यक्ति को, अपने दादा को या अपनी दादी को, एक भोजन नहीं दे रहे हैं, कैसे आदमी हैं, इस लिहाज से कुछ दे देते हैं। सबका उच्छिष्ट, सबके खाने से बचा हुआ है और फिर भी वो खाता रहता है, उसको कोई वैराग्य नहीं होता है कि अब इस घर से हमें चले जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं प्रथम स्कंध में कि महाराज धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र मारे गए थे दुर्योधन आदि, और फिर भी वे हस्तिनापुर में घर में ही रहते थे। अब युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए थे, जो युधिष्ठिर महाराज पालन करते थे धृतराष्ट्र का, और उनको भोजन देते थे भीम, वो भीम से जो उनके 100 पुत्रों को मार दिए थे, उन्हीं भीम को लगाया गया था कि आप परोसिए उनको प्रसाद, तो भीम अपने हाथ से खिलाते देते थे। विदुर जी जो धृतराष्ट्र जी के भाई लगते हैं, वे बहुत तीर्थ यात्रा करने के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, वे अपने गांव पर गए, हस्तिनापुर गए, तो धृतराष्ट्र महाराज को उपदेश करने लगे, आप क्या यहाँ पड़े हुए हैं, और आपके न चाहने पर भी आपका शरीर तो दिन पर दिन मरण के तरफ जा रहा है, आपको लज्जा नहीं आती है, आप भीम के हाथों का दिया हुआ खाकर जी रहे हैं, छी छी, जिसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया उसी के हाथ से दिया हुआ भोजन आप खाते हैं, महाराज आपको लज्जा नहीं आ रही, आप तो कुत्ता के समान है, निकल जाइए घर से और कहीं एकांत में जाकर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दीजिएगा, तब सदगति होगी। अब बहुत खराब समय आने वाला है, भगवान इस पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, भगवान कृष्ण, अब कलयुग आ गया है, आपकी बड़ी दुर्गति होगी घर में रहने पर, आप चले जाइए जंगल में। तो धृतराष्ट्र महाराज पूछे कहाँ जाऊं, तो विदुर जी कहे यहाँ से उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, वहाँ चले जाइए। तो विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र महाराज हरिद्वार चले गए, और वहीं भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि यह अवस्था आने के पहले, बहुत कमजोरी आने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना घर छोड़ दे। घर में मरने वाला दुर्गति में पड़ता है, घर में रहने पर अपने बच्चों का, अपनी स्त्री का, अपनी बहू का स्मरण होता रहता है, उनकी माया मोह, उनका माया मोह बढ़ा रहता है, इसलिए घर से दूर चले जाना चाहिए। आज के युग में बड़ी समस्या है कहाँ जाए व्यक्ति, भगवान की कृपा से सब जगह पालन हो जाता है, सब जगह भोजन की व्यवस्था है, कम से कम अपना घर छोड़ देना चाहिए। घर में रहने पर भोजन मिलता है लेकिन बड़ा अनादर के साथ, और व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तो उसको आदर के साथ भोजन मिलता है, और सबसे बड़ा लाभ है कि वो जीवन का जो चरम लक्ष्य है भगवान की भक्ति, उसके तरफ उसकी चित्तवृत्ति हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि 50 वर्ष का होने पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने घर से कहीं वन में चला जाए, नहीं तो घर में बहुत फजीहत होगी, बहुत दुख होगा। देखा जा रहा है प्रकट, एक तो बहुत बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों का वो पालन किया है वे लोग पालन करते हैं, अब वे पालन करते हैं, भोजन देते हैं, दवाई कराते हैं, कपड़ा देते हैं और बहुत ताना मारते हैं, और जवानी में जो कमाया है व्यक्ति, धन अर्जन किया है, उसका एहसान कोई नहीं मानता है, कोई ये नहीं सोचता है कि इसी का धन है, इसी का कमाया हुआ सब है, कुछ भी कमाया लेकिन अंत में अनादर ही होता है। अगर बूढ़ा व्यक्ति कभी कुछ बोले, लड़कों को कुछ कहता है, स्त्री को कहता है, तो स्त्री कहती है इसको चुप भी नहीं रहा जाता है, कम से कम चुप रहता तो घर में शांति रहती, परंतु फिर भी इसका प्रवचन चलता रहता है। वही स्त्री जो उसकी सब कमाई खाई है वो ऐसे बोलती है, और जब अधिक दिन तक बूढ़ा व्यक्ति रोग में रहे तो घर के लोग मनाया करते हैं कि अब तो राम जी सुन लेते, इनकी तो अच्छा होता है, ऐसा मर जाते तो अच्छा होता है, घर में पड़े हैं तो घर गंदा हो रहा है, थूकते हैं क्या क्या, और सेवा करनी पड़ती है। असली बात तो ये है, लेकिन वे लोग मनाया करते हैं कि हे भगवान अब कल एकादशी है, कल इनको उठा लीजिए, अच्छे दिन पर मृत्यु हो जाए अच्छा है, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो अच्छा दिन आ जाए। इस दशा में भी वो व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, उसे चाहिए कि वो घर गृहस्थी से उब करके और भगवान का भजन करे, अंत में मरण तो होगा ही सबका, उसको मरणा भी मुख कह रहे हैं, मरण अभिमुख, फिर भी गृह नहीं व्यक्ति रहता। महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि ब्राह्मण को कभी घर में नहीं मरना चाहिए, उसे तीर्थ में वन में मरना चाहिए, जहाँ अपना कोई व्यक्ति न जाने, अपना कोई न हो, स्वजन न हो, नहीं तो स्वजनों को देखने की लालसा होती है, उन्हीं को देखता हुआ मर जाता है। हम लोग देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है तो और अधिक निमंत्रण देकर उसके स्वजनों को बुलाया जाता है, अगर कहीं बेटा नौकरी कर रहा है तो उसको बुलाया जाता है और स्वजनों को बुलाया जाता है, तो उससे उसकी और दुर्गति होती है, उनका मुख देखते हुए बड़ी कठिनाई से प्राण छोड़ता है। पर नियम यह है कि ऐसे जगह मरना चाहिए जहाँ स्वजन नाम का कोई व्यक्ति न हो, मरना तो निश्चित है एक दिन, और कब मरेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, मरना है ये निश्चित है, टाइम और डेट कुछ मालूम नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आसन्न मृत्यु है, मृत्यु बहुत निकट है, जब पता ही नहीं है कि कब होगा तो निकट ही मान लेना चाहिए, आज या कल परसों, इस तरह से प्रत्येक विवेकी व्यक्ति को अपनी मृत्यु को हमेशा अपने निकट देखना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल केस पकड़ लिया है, वो पता नहीं कहाँ मारेगा, देश में परदेश में कहाँ मारेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पुरुषों के लिए यह जरूरी है कि वह 50 वर्ष का होने पर पूर्ण रूप से घर त्याग दे, इसकी चिंता न करे, हमारा पालन कैसे होगा, हमको भोजन कहाँ मिलेगा, हमको घर कहाँ मिलेगा। जहाँ कहीं विशाल पृथ्वी है, कहीं जंगल में, कहीं आश्रम में, कहीं कोई उपेक्षित घर है, वहाँ रह कर गुजारा कर ले, और हमेशा हरे कृष्णा जय। भगवान का स्मरण करता रहे, नाम जप करता रहे, इससे उसका यह जीवन भी सुखी रहेगा और परलोक तो है ही, तो भगवान के धाम में जाएगा। यह केवल अत्यंत तुच्छ परिवार के लोगों की दशा नहीं है, बड़े बड़े परिवार में भी यही दशा है। स्त्री पुत्र बहुत उपेक्षा करते हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ थे तो उनकी पत्नी उनका अनादर करती थी। एक बार श्रीमद् भागवत के व्याख्या को वे पेपर पर लिखे हुए थे, तो वो उसी पेपर को लेकर गई पंसारी के दुकान पर और रद्दी कागज के भाव में उसको बेच दी, उस कागज को बेच दी और उससे चाय खरीदी। तो श्रील प्रभुपाद उसको कहे, चूज आइदर मी और टी, अब मी को पसंद करो, मुझको पसंद करो या टी को, तुम चाय छोड़ो नहीं तो अब मैं छोड़ दूंगा। तो वो चाय नहीं छोड़ी, प्रभुपाद जी उसको छोड़ करके चले आए मथुरा। मथुरा में आकर के पहले वानप्रस्थ आश्रम लिए केशव देव गौड़ीय मठ में, और कुछ वर्षों के बाद संन्यास लेकर के केशव देव महाराज से संन्यास लेकर के वृंदावन आ गए, और राधा दामोदर मंदिर में एक कमरे में उन्होंने लगातार शास्त्र का अध्ययन किया, लेखन किया, विशेष करके श्रीमद् भागवतम का। और इसके बाद वे अमेरिका की यात्रा किए। तो श्रील प्रभुपाद संन्यास लिए बिल्कुल फ्री हो गए घर गृहस्थी से, और वो तो पूरा विरक्त थे संसार से भी, तो इतना बड़ा उपकार किया उन्होंने। अगर वे गृहस्थ ही रह गए होते तो उपकार नहीं हुआ होता। तो यह जरूरी है कि संन्यास लेकर के व्यक्ति परहित का कार्य करे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसका कर्तव्य है कि घर घर में जन जन में जा करके उनको आध्यात्मिक जीवन में प्रेरित करे। केवल घर गृहस्थी में खाने कमाने के लिए, दो चार लोगों के पालन पोषण के लिए हम लोग नहीं हैं, यह तो जीवन का बहुत दुरुपयोग है। वास्तव में सच्चा उपयोग यही है कि संन्यास लेकर के परोपकार किया जाए, अपने जीने मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान पालने वाले हैं, सारे जगत का पालन करते हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी जलचर जीव इत्यादि सबका पालन हो रहा है। हम लोग देखते हैं बानरों का भी पालन हो रहा है, उनके लिए कोई सूट पैंट की जरूरत नहीं है, स्कूल की जरूरत नहीं है, न तो हॉस्पिटल चाहिए, न तो निश्चित भोजनालय चाहिए, पर उनको भी खाने को भगवान देते ही हैं। उनको भी रोग कुछ होता है, वो चिकित्सा कर लेते हैं अपने स्वाभाविक ढंग से। सोने के लिए फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, लेकिन कहीं सो लेते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए अपनी चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चिंता केवल इसकी होनी चाहिए कि हमारा मन भगवान कृष्ण में लगा रहे, बस भगवान के विषय में बोलते रहें, सुनते रहें, उनको नमस्कार करें। भगवत धाम की परिक्रमा करें, मुख्य है भगवान के नाम का उच्चारण हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे जो आराम देह स्थिति समझते हैं लोग, कि परिवार में लड़के हो, पत्नी हो, घर में धन हो, ठीक हो, लेकिन इन सब के द्वारा भी कोई सुख नहीं है। जीवित अवस्था में पत्नी कभी कभी पति से कहती है, जब आप पहले मर जाएंगे तो मैं भी मरूंगी और मर करके मैं आपके साथ जल जाऊंगी। लेकिन ऐसा कह करके वो पति का सारा धन खा जाती है, और पति जब मर जाते हैं तो घर के बाहर भी नहीं जाती है श्मशान में। दूसरे लोग श्मशान ले जाते हैं। ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं परम सती। पति मर जाता है फिर भी वे तमाशा देखने जाती हैं, फिर भी वे सामाजिक उत्सवों में भाग लेती है। लेकिन व्यक्ति ऐसी पत्नी के ममता में पड़ा रहता है और वह यही समझता है कि हमको तो बिल्कुल अनसुईया मिली है, अरुंधति मिली है, लेकिन वो अरुंधति अनसुईया पति के मरने के बाद सिनेमा देखने लगती है। इस संसार में कुछ भी संबंध नित्य नहीं है, और जब तक है तब तक दुखद है। लड़का भी इसी तरह से होता है, कौन पिता की परवाह करता है, सब अपने अपने समय के अनुसार चले जाते हैं, बीमार होते हैं, वृद्ध होते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। लड़का अपनी नई पत्नी को लेकर के संतुष्ट रहता है, खाना पीना घूमना यही काम रहता है, पिता के हित के लिए वो श्राद्ध तक नहीं करता है। कल से श्राद्ध पक्ष चालू होगा। कितने बेटा ऐसे हैं जो पिता की चिंता करते हैं, बहुत कम। असली श्राद्ध है भगवान का भजन करना, उनकी भक्ति करना। भक्ति करने से पितरों का उद्धार हो जाता है, लेकिन उस नियत से भी दो चार माला बढ़ा करके करना ये धर्म है। पितरों के लिए कुछ शास्त्र भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, और भगवान का नाम लेना, नमस्कार करना, ये धर्म है। पर यह भी लोग नहीं कर पाते, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के विषय में अपने आप समर्थ होना चाहिए। बेटा पर आशा नहीं करनी चाहिए कि ये कुछ करेगा, हमें जो भी करना है स्वयं करना है। इसलिए जीवन के अंतिम भाग में घर से दूर रहना चाहिए। कहीं साधु समाज में, भक्तों के समाज में रहेंगे, गुजारा हो जाएगा। कहीं कहीं अनादर होता है तो सब जगह जैसे परिवार में होता है, साधु समाज में भी कभी कभी अनादर होता है। आप पंगत में बैठिए तो वो कहेंगे कभी कभी कि इधर कहीं जाओ, उधर उधर बैठो, अभी नहीं मिलेगा, अभी दूसरे पंक्ति में बैठना है, तीसरे में बैठना है, या कभी ये भी कह सकते हैं यहाँ नहीं मिलेगा, प्रसाद खलास हो गया, जाओ अब राम राम करो, कल आना। तो ये सब सहना चाहिए, द्वंद्व है। मात्रा स्पर्शांश तो कौन क्या शीत दुख है, आगमा पाइनो अनित्यांशान प्रतीक्षा स्व भारत। भगवान भी कह रहे हैं ताम प्रतीक्षा स्व, इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसको हे भारत, हे भरत वंशी अर्जुन, तुम सहो ताम प्रतीक्षा स्व, सहन करो। भगवान सहन करने के लिए अपने भक्त को कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, सारे संसार को मैं तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा, सुखी कर दूंगा, नहीं। ये सब द्वंद रहेगा, तुम इसको सहो, सहने की कला सीखो, मान अपमान सुख दुख सब सहना चाहिए, सब सह करके अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। लक्ष्य है कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का नाम उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।